नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के तिरुप्पा रनकुंडरम पहाड़ी पर स्थित दीपथून स्तंभ पर दीपक जलाने की अनुमति देने के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। बांग्लादेश के नरसिंहदी शहर में हमलावरों ने एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या की। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने देश की 5 शास्त्रीय भाषाओं को प्रतिनिधित्व करने वाली 55 दुर्लभ और बहुमूल्य साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा संबंधी तनाव से निपटने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मनो सामाजिक परामर्श सहायता शुरू की और घने कोहरे के कारण देश के कई हिस्सों में रेल सेवाएं बाधित। अब समाचार विस्तार से। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के तिरुप्पा रनकुंडरम पहाड़ी पर स्थित दीपथून स्तंभ पर दीपक जलाने की अनुमति देने के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और के रामाकृष्णन की खंडपीठ ने कहा है कि जिस स्थान पर दीपथून नामक पत्थर का स्तंभ है वह भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का है। पीठ ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने परामर्श के बाद दीपक जलाए जा सकते हैं। अदालत ने कहा है कि इसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
हिंदू मुन्नानी के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता निरंजन एस कुमार ने बताया कि खंडपीठ ने कहा है कि दीपक जलाना अनिवार्य है और इसे तिरुप्पारन कुंडरम पहाड़ी की चोटी पर ही जलाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता राजेश ने भी न्यायालय के आदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि दीप थून के रूप में दीपक जलाया जाना चाहिए और मंदिर प्रशासन को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये फैसला तमिलनाडु में हिन्दुओं और भगवान मुरुगन के श्रद्धालुओं की जीत है। समाचार कक्ष से।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की भारतीय रेलवे खानपान तथा पर्यटन निगम IRCTC घोटाला मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर CBI ने जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने CBI को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी तय की है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद आज राज्य की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। मसौदा मतदाता सूची पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप अरणवा ने बताया है कि देवदारी और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि आज से 6 फरवरी तक निर्धारित की गई है। इस नोटिस चरण के दौरान 27 फरवरी तक दावे और आपत्तियों पर निर्णय लिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को पिछले वर्ष 30 दिसंबर को मतदान पर्यवेक्षक सी मुरुगन पर हुए हमले के संबंध में आज शाम 5 बजे तक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सी मुरुगन पर दक्षिण 24 परगना जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य करते समय हमला हुआ था। बांग्लादेश के नरसिंहदी शहर में अज्ञात हमलावरों ने एक 40 वर्षीय हिन्दू व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। नरसिंहदी जिले में किराना व्यापारी मोनी चक्रवर्ती की हत्या से पूरे बांग्लादेश में भय और आक्रोश भर गया है। मोनी की हत्या थोड़े ही समय में इस तरह की चौथी घटना है। बांग्लादेश पुलिस के अनुसार मोनी चक्रवर्ती पर कल रात 11 बजे हमला कर हत्या कर दी गई। मोनी अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। वहीं बांग्लादेश में झेनान इरा जिले में कालिंगगंज का इलाके में एक हिंदू महिला ने आरोप लगाया है कि उसे पेड़ से बांधकर बुरी तरह प्रताड़ित करने के बाद उसका सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने दावा किया है कि उसके बाल काटे गए और दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया। इस मामले में 45 वर्षीय हसन नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज देश की 5 शास्त्रीय भाषाओं तमिलनाडु, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओडिया की 55 दुर्लभ साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। इस पुस्तकों का प्रकाशन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा है कि भारतीय भाषाएं समाज को एकजुट करती है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष सरकार ने कई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था।
हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज होती थी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। बीते साल सरकार ने और 5 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का मान्यता दिया है, मराठी, बंगाली, ओहमिया और दो प्राचीन भाषा पाली और।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा है कि राज्य सरकार ने लादा सारली सीमांत राजमार्ग से जुड़े भूमि मुआवजे मामले की पुनः समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है और इस संबंध में मामला पहले ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज किया जा चुका है। सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय ईडी जांच की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने ईटानगर स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि विधि सम्मत जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र संस्थाएं हैं और राज्य सरकार उन्हें किसी मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश नहीं दे सकती। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने परीक्षा संबंधी तनाव से निपटने के लिए विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता शुरू की है। सीबीएसई की परीक्षाएं इस वर्ष 17 फरवरी से शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सेवाएं तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। एक रिपोर्ट।
कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क परामर्श इस वर्ष 1 जून तक जारी रहेगा। विद्यार्थी टोल फ्री नंबर 1800118004 पर हिंदी और अंग्रेजी में 24 घंटे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा तनाव मुक्त तैयारी, प्रभावी समय और तनाव प्रबंधन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस सेवा के अंतर्गत विद्यार्थियों और अभिभावकों को सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, परामर्शदाताओं, विशेष शिक्षकों और योग्य मनोवैज्ञानिकों सहित 73 प्रशिक्षित पेशेवर सहायता प्रदान करेंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार।
देश के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रेलवे के अनुसार कम दृश्यता के कारण दिल्ली आने वाली 70 से अधिक रेलगाड़ियां विलंब से चल रही है। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी रेलगाड़ियों की स्थिति की जानकारी लेने का परामर्श दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और बिहार में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर कड़ाके की ठंड पड़ने का भी अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, लोहित, नामसाई और चांगलांग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से मानव जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। श्री प्रसाद ने जयपुर में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये मिशन स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक बदलाव के लिए एआई के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
अब हर हाथ में गांव-गांव तक लोगों के पास मोबाइल फोन हो गया है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इतनी तेजी से हम लोगों की जिंदगी में आने वाला है और आ गया है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, देश की उन्नति होगी। एआई इंडिया मिशन 10,000 करोड़ का निवेश भी इसमें किया है, जिसके तहत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्राथमिकता में रखी जाएंगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक सशक्त विरासत है जिसने राष्ट्र के विकास पथ को दिशा दी। वे नई दिल्ली में ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में पोषण सुरक्षा और कुपोषण निवारण में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की भूमिका पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री गोयल ने कहा है कि गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण सुनिश्चित करके कुपोषण रोका जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के तिरुप्पारनकुंडरम पहाड़ी पर स्थित दीपथून स्तंभ पर दीपक जलाने की अनुमति देने के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। बांग्लादेश के नरसिंहदी शहर में हमलावरों ने एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश की 5 शास्त्रीय भाषाओं को प्रतिनिधित्व करने वाली 55 दुर्लभ और बहुमूल्य साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा संबंधी तनाव से निपटने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श सहायता शुरू की और घने कोहरे के कारण देश के कई हिस्सों में रेल सेवाएं बाधित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।